श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 5 नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन। राजा निमि ने आगे पूछा, हे योगेंद्रो, आप सभी लोग आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं, अतएव मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः भगवान हरि की पूजा नहीं करते, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। श्री चमस ने कहा, ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए। इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य पतित जाति के व्यक्ति सदा ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण, राजसी वर्ग के लोग तथा वैश्य जन वैदिक दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म प्राप्त करके द्विज भगवान हरि के चरण कमलों के निकट जाने की अनुमति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। कर्म कला से अनजान, वेदों के मधुर शब्दों से मोहित तथा जागृत ऐसे उद्दत गर्वित मूर्ख जन अपने को विद्वान होने का ढोंग रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। वे चालबाज, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पाप पूर्ण होने से भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायी भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी गृहस्थ इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, न ही ब्राह्मणों तथा अन्य सामान्य व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। विपरीत इसके वे अपने कर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना क्रूरता पूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध करते हैं। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा, ऐश्वर्य, उच्च कुलीनता, शिक्षा, त्याग, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदांध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं। प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भी भगवान उनसे पृथक रहते हैं। जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भौतिक वस्तु में घुल मिल नहीं जाता, इस प्रकार भगवान परम पूज्य हैं तथा हर वस्तु के परम नियंता हैं। वेदों में उनकी विस्तार से महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धि विहीन हैं, वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय अपने उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो यौन जीवन तथा मांसाहार जैसी स्थूल इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन मांसाहार तथा नशे के प्रति सदैव उन्मुख रहता है, इसीलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा यौन यज्ञों द्वारा मांसाहार तथा उत्सवों में तुरा के प्याले ग्रहण करके नशे के लिए शास्त्रों का आदेश है, किंतु ऐसे उत्सवों का मंतव्य उनकी ओर से विरक्ति उत्पन्न करना है। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सवों में तुरा प्रदान की जाती है तो उसका पी कर नहीं अपितु टूंग कर उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं, किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी जन यह नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। वे पापी व्यक्ति जो असली धर्म से अनजान होते हुए भी अपने को पूर्ण रूपेण पवित्र समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप किए हिंसा करते हैं जो उनके प्रति पूर्णतया आश्वस्त होते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्मों में उन्हीं पशुओं द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका वे इस जगत में वध किए रहते हैं। भद्र जीव अपने शव तुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधियों एवं साज सामान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसी गर्वित एवं मूर्खता पूर्ण स्थिति में भद्र जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का अपमान करने से भद्र जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, वे सामान्यतया धर्म, अर्थ तथा काम इन तीन पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने से वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे आत्मघाती बन जाते हैं। इन आत्महंताओं को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वे यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए है। इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए वे सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं एवं स्वप्नों से पूरित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रवाह के कारण ये सब सदैव ध्वस्त हो जाते हैं। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा प्रेमी जनों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। राजा निमि ने पूछा, भगवान प्रत्येक युग में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। श्री करभाजन ने उत्तर दिया, कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलि इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और विविध विधियों से पूजे जाते हैं। सत्य युग में भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं, उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण किए रहते हैं। सत्य युग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। सत्य युग में भगवान की महिमा का गायन हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा नामों से किया जाता है। त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है, उनकी चार भुजाएं होती हैं, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी पहनते हैं, जो तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है। ऋग, साम तथा यजुर्वेदों में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात रूप उन भगवान के प्रतीक शत्रु शत्रुवा इत्यादि यज्ञ के पात्र होते हैं। त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धार्मिष्ठ हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं, वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। त्रेता युग में विष्णु यज्ञ, कृष्णि गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत तथा उरुगाय नामों से भगवान का गुणगान किया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीतांबर धारण किए प्रकट होते हैं। इस अवतार में भगवान के दिव्य शरीर में श्री वत्स तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग परम भोक्ता भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के आदेशानुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। हे परम स्वामी वासुदेव, आपको तथा आपके संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नारायण ऋषि, हे ब्रह्मांड के सत्रष्टा, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदि स्वरूप, हे समस्त जीवों के परमात्मा, आपको सादर नमस्कार है। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे। कलियुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुने। कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्टों को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव हैं। इसीलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहते हैं। हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के श्राप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुता वश पतित बद्ध जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। इस प्रकार हे राजन, भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वे इस कलि युग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलि युग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। निसंदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है, जिसके द्वारा वह परम शांति पा सके और अपने को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। हे राजन, सत्य युग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलि युग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। हे मनुष्यों के स्वामी, कलियुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अतीव पवित्र कावेरी तथा प्रतीची महानदी का जल पान करेंगे, वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही विनाश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोग वश कोई पाप कर्म कर भी बैठे हैं, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। नारद मुनि ने कहा, इस तरह भक्ति योग की बातें सुनकर मिथिला के राजा निमि अत्यंत संतुष्ट हुए और अपने यज्ञ पुरोहितों सहित जयंती के मेधावी पुत्रों का सत्कार किया। तब वे सिद्ध मुनि गण वहां पर उपस्थित सबों की आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। राजा निमि ने उनसे सीखे गए आध्यात्मिक जीवन के नियमों का श्रद्धा पूर्वक अभ्यास किया और इस तरह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। हे परम भाग्यशाली वसुदेव, आपने भक्ति के जिन नियमों को सुना है उनका श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करें और इस तरह भौतिक संगति से छूटकर आप परम पुरुष को प्राप्त होंगे। निसंदेह सारा संसार आप तथा आपकी पत्नी के यश से भरा पूरा हो चुका है, क्योंकि भगवान हरि ने आपके पुत्र का स्थान अपनाया है। हे वसुदेव, आप तथा आपकी उत्तम पत्नी देवकी ने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके उनके प्रति महान दिव्य प्रेम दर्शाया है। निसंदेह आप दोनों भगवान का सदैव दर्शन तथा आलिंगन करते रहे हैं, उनसे बातें करते रहे हैं, उनके साथ विश्राम करते तथा उठते बैठते तथा उनके साथ अपना भोजन करते रहे हैं। भगवान के साथ ऐसे स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ संग से आप दोनों ने अपने हृदयों को पूरी तरह शुद्ध बना लिया है। दूसरे शब्दों में आप दोनों पहले से पूर्ण हो। शिशुपाल, पौंड्रक तथा शाल्व जैसे विरोधी राजा भगवान कृष्ण के विषय में निरंतर सोचते रहते थे। सोते बैठते या अन्य कार्य करते हुए भी वे भगवान के चलने फिरने, उनकी क्रीड़ाओं, भक्तों पर उनकी प्रेम पूर्ण चितवन तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अन्य आकर्षक स्वरूपों के विषय में ईर्ष्या भाव से ध्यान करते रहते थे। इस तरह कृष्ण में सदैव लीन रहकर उन्होंने भगवान के धाम में मुक्ति प्राप्त की। तो फिर उन लोगों को दिए जाने वाले वरों के विषय में क्या कहा जाए जो अनुकूल प्रेम भाव से निरंतर भगवान कृष्ण पर ही अपने मन को एकाग्र रखते हैं। कृष्ण को सामान्य बालक मत समझिए, क्योंकि वे भगवान अव्यय तथा सबों के आत्मा हैं। भगवान ने अपने अचिंत्य ऐश्वर्य को छिपा रखा है, इसीलिए वे बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान पृथ्वी के भार स्वरूप आसुरी राजाओं का वध करने तथा संत भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु असुर तथा भक्त दोनों ही को भगवत कृपा से मुक्ति प्रदान की जाती है। इस तरह उनका दिव्य यश ब्रह्मांड भर में फैल गया है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह कथा सुनकर परम भाग्यशाली वसुदेव पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन्होंने तथा उनकी परम भाग्यशालिनी पत्नी देवकी ने उस भ्रम तथा चिंता को त्याग दिया जो उनके हृदयों में घर कर चुके थे। जो स्थिर चित्त होकर इस पवित्र ऐतिहासिक कथा का ध्यान करता है, वह इसी जीवन में अपने सारे कलमश धोकर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा वसुदेव को दी जाने वाली शिक्षाएं समापन नामक 5वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए हैं।